नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हिंदी हिंदी बुक आज पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27। अध्याय का टाइटल अटैक बाय चंडवेगा ऑन द सिटी ऑफ पुरंजन। श्लोका नंबर 25। द्वाव इमाव अनुसोचन्ति बालव सदव गृहो यल्लोक शास्त्रोपन्तम् नराति न तत् इच्छति। द्वाव इमाव अनुसोचन्ति बालव असत अवग्रहो यल्लोकशास्त्रोपन्तम् नराति न तच्छति। द्वाव इमाव अनुसोचन्ति बालव असत अवग्रहो यल्लोकशास्त्रोपन्तम् नराति न तदच्छति। द्वाविमावनशोचन्ति माता जी। मीनिंग दो प्रकार के इमो ये अनुसोचन्ति पश्चाताप करते हैं बालो अज्ञानी असत मूर्ख अवग्रहो पथ का अनुसरण करते हुए यत जो लोक प्रथानुसार शास्त्र शास्त्रों के अनुसार उपन्तम प्रस्तुत न कभी नहीं राति पालन करता है न कभी नहीं तत वह इच्छति इच्छा करते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेश अनुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तात्पर्य यहाँ इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता 16.23 में इसी को इस प्रकार कहा गया है। यह शास्त्र विधि मृत्युज वर्तते कामकारता न स सिद्धि वपनौती न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है न सुख और न परम धाम। जो वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन नहीं करता उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ या क्षत्रिय या शासक को उनके अनुरोध का ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राज के प्रति समर्पित होने के लिए निर्दिष्ट किया था, इसलिए यवन राज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाना चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्तेते करियायके। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों शास्त्रों तथा गुरु के नियमों का पर चलने, इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। काल कन्या यवनराज के समक्ष साधु शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। ओम अज्ञान तिमरंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री उतारपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखावितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु भयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ ताकि वो मुझे आशीर्वाद दीजिए और भगवान का प्रशंसा कर सके और अपने सेवा के अनुसार। तो मेरा हिंदी बोल सकता हूँ अच्छा, लेकिन क्लास के समय थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि मुझे कहा गया है हिंदी में क्लास देने के लिए, तो कि इसलिए। तो हम देखते हैं कि ये जो अध्याय चल रहा है, बहुत सारे अध्याय इसमें नारद मुनि ऑलरेडी कह चुके हैं, तो उनको किंग प्राचीनी परिषद को पुरंजन के बारे में पुरंजन का उदाहरण देके और सभी जीवों को शिक्षा देने के लिए। तो अभी जो चल रहा है ये अध्याय, राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। तो ये अध्याय चल रहा है कि राजा पुरंजन जो इंद्रिय तृप्ति करने के बाद अभी उन पर चंडवेग और अब का अटैक होने लगा है। तो अभी ये जो काल कन्या है, हम देखा कि रामनित्य प्रभु ने कल पूरा इस पृष्ठ से बताया था कि कैसे काली कन्या कौन है और कैसे नारद मुनि को अप्रोच करते हैं। बाद में फिर नारद मुनि को श्राप भी देती है, क्योंकि नारद मुनि जो है वो नारद मुनि जो उनके उनके कहना स्वीकार नहीं किया, इसलिए तो नारद मुनि को उन्होंने श्राप दिया। लेकिन भक्तों का ये है कि क्वालिटी कि वो कभी किसको निराश नहीं करते हैं। हालांकि कमी है एक्चुअली भक्तों का क्वालिटी कंपेशन। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके यवन राज को अप्रोच करो, और फिर काले कन्या यवन राज के पास गई थी। और प्रभुपाद बहुत अच्छा कल तात्पर्य बताया कि यवन और मलेच्छा के बीच में क्या अंतर, यवन और मलेच्छा सेम ही रहते हैं, यवन राज का मतलब, यवन का मतलब क्या है। हमको लगता है कि यवन मतलब किसी एक देश में जो लोग रहते हैं और मलेच्छा जैसे, लेकिन प्रभुपाद ने पूरा अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि यवन और मलेच्छा वो है जो भली वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, भली हालांकि वो इंडिया में हिंदुस्तान में रहेंगे या ब्राह्मण के घर में भी जन्म लेंगे, लेकिन जो यवन मतलब क्या, यवन मतलब राजश्याम प्रभु बता रहे थे शनिवार को, यवन का मतलब कि बैड क्वालिटीज लाइक ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, और ये तो छोटे छोटे बैड क्वालिटीज है, इससे बढ़ के होते तो वो यवन यवन का मतलब है। तो यवन और मलेच्छा वो रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका कोई किसी देश से संबंध नहीं है, बल्कि शास्त्रों से संबंध है। जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो ये कैटेगरी में आते हैं। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि वृद्ध, एक्चुअली वृद्ध जिस काले कन्या जरा जो है उनको कोई स्वीकार नहीं करा था, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि तुम यवन राज के पास जाओ, जिनको जो बैड क्वालिटीज में आ जाते हैं, ज़्यादा इंद्र तृप्ति करते हैं, तो वो बहुत मृत्यु का मतलब जरा मतलब मृत्यु के करीब, तो बहुत जल्दी आ जाते हैं उसके करीब। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा कि तुम उनको जाके अप्रोच करो। और तो फिर वो कालकन्या गई, और कालकन्या उनको शास्त्रिक के अनुसार बता रही है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई अगर स्त्री किसी राजा या गृहस्थ या इधर लिखा है क्या, या शासक को जो संभालता है, उनको अगर स्त्री कोई रिक्वेस्ट करती है तो उनको कभी मना नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये शास्त्रों का ही है। हम देखते हैं कि ये भागवत में भी आता है, जब युधिष्ठिर महाराज इनको अर्जुन को बोलते हैं जाओ कृष्णा को द्वारका में देख के आओ, उनका हालचाल लेके आओ, कैसे हैं कृष्णा। और अर्जुन वहीं पर थे कृष्णा के पास, और द्वारका गए थे कृष्णा के पास, थे बहुत दिनों तक आए नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत ऐसे लग रहा था कि कुछ तो भी अशुभ हुआ है। फिर जब बहुत दिनों के बाद अर्जुन आए तो उनका थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था, वो थोड़े मोरोस दिख रहे थे। फिर उन्होंने बहुत सारे रीज़न बताए उनके, एक युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपका एक रीज़न ये है कि किसी स्त्री ने आपको अप्रोच किया है, लेकिन आप उनको शरण देने में, आश्रय देने में असफल रहे क्या। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये प्रॉपरली शास्त्रिक है, तो इसलिए काले कन्या उनको शास्त्रिक वे से बताती हैं। तो हम देखते हैं कि फिर आगे के श्लोका में पता चलेगा कि हाउ, क्योंकि नारद मुनि ने कहा है इसलिए उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो लेकिन जो तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य है, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इस पर शास्त्रिक वैदिक नियमों का पालन पर बहुत जोर दे रहे हैं। इवन कल के श्लोका में भी प्रभुपाद ने बहुत स्पष्टीकरण किया था कि आज के जमाने में वैदिक नियमों का पालन करने का मतलब क्या है, स्पेशली स्कॉन के जो हम नियम पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने वो कहा है कि अगर जो कोई नियम पालन करते रहेगा स्कॉन का, जैसे सुबह मंगल आरती में उठना और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना, और भागवतम और सेवा करना, तो ये वैदिक नियमों का पालन करना है। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली बहुत सारे, हम इस्कॉन में आने से पहले तो हमको पता भी नहीं था, पता था लेकिन ऐसे स्पृष्टिपूर्ण से नहीं पता था कि ये वैदिक नियम है नहीं है। अभी हमको इतना सरल, हम नहीं चाहते हुए भी हम रेगुलरली पालन कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे वैदिक नियमों का पालन करना। तो एक श्लोका है कि उसमें उसका मतलब यह है कि कहा गया है कि भक्ति में, भक्ति ऐसा है, इतना सरल है, इतना सरल है कि अगर जो कोई आंख बंद करके भी वो रास्ते पर दौड़े तो वो अपना गोल उनको मिल जाएगा। तो इतना सरल है। तो ये हमको आचार्यों की कृपा से बहुत कठिन से कठिन चीज़ें जो वो दुर्लभ है बहुत सरलता से मिल जाती है। हम देखते हैं कि हमारा, हम बहुत सालों से कर रहे हैं वैदिक नियम पालन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पहले तो हमको कुछ पता नहीं था। तो इसलिए शास्त्रों का, भगवान बोलते हैं कि शास्त्रों का जो आज के वर्ष में प्रवाद कर रहे हैं कि शास्त्रों का कठिनता, बहुत कठिनता से करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो इवन हम जब सबसे पहले शास्त्रों को कहा गया कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए, इवन जब हम ड्यूटी वर्शिप करते हैं तो सबसे पहले उसमें वो वर्स आता है, बिफोर बिगिनिंग वर्शिप, वर्शिप स्टार्ट करने से पहले एक वर्स आता है कि हरि भक्ति विलास का कोट करते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि जो, भगवान कहते हैं कि जो गुरु की भक्ति करता है और उसके बाद मेरी पूजा करता है जीवन में सफलता पाता है, नहीं तो उसकी पूजा कुछ महत्व नहीं रखती है, उसके विपरीत वो जीवन में असफल ही रहेगा। तो ये हम भी डीटी वर्शिप के जो है पूजा करना, तो सब कनेक्टेड टू गुरु की सेवा से ही है। तो हम अपने जीवन में कैसे शास्त्रों का नियम पालन करना चाहिए, वो बस हम अपने आचारों के कहने पर चलेंगे तो अपने आप पालन होते हैं। तो डीटी वर्शिप बिगिनिंग ही ऐसे होता है कि गुरु को एक्सेप्ट करना और उनसे परमिशन लेके भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कितना आचार्य ने बहुत सरल वे बना दिया है कि ये नियम पालन करना। और उसी तरह बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, तो हम अभी देखेंगे कि भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जो भक्त गुरु का शरण लेते हैं और जो गुरु उनको प्रॉपर मार्गदर्शन देते हैं। अभी मैं जस्ट 7th कैंटो में पढ़ रहा था, क्योंकि इधर इसमें लिखा गया है कि वैदिक नियम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबके ड्यूटीज के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। और ये 7th कैंटो स्पेशली 12वां स्कंद, 11वां 12वां वर्ण आश्रम और फिर 13वां स्कंद, 13 जो अध्याय हैं, 13वां अध्याय में जाके वो नारद मुनि प्रहलाद महाराज वो सेंडली पर्सन, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति से मिलता है और वो उनको सब प्रॉपर मार्गदर्शन देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो नारद मुनि जो युधिष्ठिर महाराज को ये संवाद बता रहे हैं, तो उसमें 12वें स्कंद में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, वानप्रस्थ का क्या है, सन्यासी का कहा गया है। क्योंकि कर्तव्य, कार्य कोई भी रहे, कोई भी कार्य करे, अगर जो वो वैदिक शास्त्रों के और मार्ग, गुरु के मार्ग के अनुसार कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य एक ही है, भली अलग अलग वे हैं, लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति। तो ब्रह्मचारी का जैसे उसमें बताया कि बहुत गुरु के आश्रम में रहते हैं और पूरा दिन वो गुरु की सेवा करते हैं और उनके जो गुरु कहते रहते हैं वो पूरा कार्य में बिजी रहते हैं। जैसे कल यही बता रहे थे, कृष्णानंद गुरु ब्रह्मचारी क्लास में बता रहे थे कि उनके जीवन में, बोले मेरा जब जीवन था मैं सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में उठता था, सुबह जब ब्रह्मचारी बहुत नए, अभी भी है, पहले जो जल्दी ज्वाइनिंग करते समय बता रहे थे कि सुबह उठता था और मॉर्निंग प्रोग्राम करने का थोड़ा प्रसाद लिया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर पूरा दिन सेवा में लग गया, फिर दोपहर में ब्रह्मचारी क्लास, फिर सेवा, फिर शाम को प्रोग्राम। तो ऐसे करते करते उनके बहुत सारे दिन निकल गए। अभी बोले 30 साल हो गए उनको, कृष्णानंद प्रभु को। तो ब्रह्मचारी का ऐसे जीवन चले जाता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे गुरु के आश्रम में मैं कब आया था और सेवा करते करते कैसे मेरे दिन निकल गए। इवन एक कहानी भी है कि गुरु एक जने को लकड़ियाँ, जंगल में से लकड़ियाँ लाने के लिए बोलते हैं। तो लकड़ियाँ लेके आते हैं, बीच में वो देखते हैं कि अभी मेरे बाल सफ़ेद हो गए, दिख जाता है। तो फिर उनको सोचता है कि मेरे को आश्रम में इतने साल हो गए, और जब आश्रम ज्वाइन किया था बहुत छोटा, क्योंकि पहले के ज़माने में आश्रम मीन्स 5 साल से होता है, और वो उनका उम्र 80-90 ऐसे साल हो गए थे। तो इतने जीवन उनको पता भी नहीं चला कि कैसा मेरा उम्र निकल गया। फिर वो गुरु को अप्रोच किया, बोले मेरा इतना उम्र निकल गया, आपने मुझे आश्रम चेंज करने के लिए भी, दूसरा गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए भी नहीं कहा मुझे कुछ। बोले क्योंकि तुम इतना सेवा में मग्न थे, पूरा दिन भगवान की सेवा, गुरु की सेवा करते करते, कि मुझे ये थॉट्स भी नहीं आके आपको बोलना चाहिए कि आप आश्रम गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो ये सब ब्रह्मचारी के ड्यूटीज और बहुत सारे हैं जो वो इसमें बताया गया है। तो इसलिए कि वैदिक नियम जो कहा गया है पालन करने के लिए बहुत कठिन तरह से, उसके बाद फिर गृहस्थ के भी आते हैं, नहीं उसके बाद वानप्रस्थ, ऐसे चैप्टर वाइज में बताया गया है। वानप्रस्थ के बहुत एक्चुअली बहुत कठिन उसमें बताया गया है कि वो जो भी अन्न उगता है खेती में वो उसको वैसे ही खाना है, पका हुआ नहीं, ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं। और जो भी वस्त्र ऐसे मिलते हैं जंगल में जाना चाहिए, तो लेकिन वही गोल कि भगवान की प्राप्ति के लिए। और फिर संन्यास के बारे में बताते हैं, सन्यासी एकदम रिनाउंस, कभी एक जगह नहीं रुकना, क्यों नहीं बोल तीन दिन से वहाँ पर ऐसा लगेगा कि एक जगह नहीं रुकना, इसका मतलब कि आसक्ति बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए वो घूमते रहते हैं। तो बाद में फिर गृहस्थ के बारे में आते हैं, जो बाद आफ्टर ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, क्योंकि बाद में लिखते हैं कि इसलिए कहा गया कि बाद में, क्योंकि गोल है कि ये स्लोली स्लोली गृहस्थों को भी वो स्टेज पे आना है कि पहले 25 साल के 50 साल तक पत्नी से और बच्चों से, बाद में फिर वो सब छोड़ देना है रिश्ते, और देन भगवान की भक्ति में। आपको प्रभुपाद ने हमको इस्कॉन में तो अच्छा सुविधा दिया है कि कहा गया कि वानप्रस्थ मतलब घर में रह के पूरा रह के, और बाद में फिर मंदिर में सेवा करना चाहिए पूरा दिन, और फिर गुरु के आगे के पालन करना चाहिए। तो इस तरह अलग अलग ड्यूटी कहा गया है, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो एक बार प्रहलाद महाराज अपने ये आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति से सुनने की खोज में वो प्लान, उन्होंने इच्छा किया कि हम थोड़ा जाके देख मिलता हूँ, जैसे घूमता हूँ पूरे राज्य में क्या चल रहा है। तो अपने कुछ साथियों को लेके गए वहाँ पे, जो भी ये इस इच्छा से थे आत्मा साक्षात्कार करने के। तो जब जाते हैं कि उन्होंने देखा कि कावेरी नदी के तट के इधर किनारे के इधर वो एक व्यक्ति है, अवधूत व्यक्ति वहाँ पर सोए हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो याचिक व्यक्ति था, कि डिपेंड किस पर डिपेंड नहीं था, जो भी भगवान ने उनको दिया वो स्वीकार करते थे, और जो नहीं दिया तभी भी वो खुश रहते थे भगवान का स्मरण करने में। तो कोई उनको समझ नहीं सका। एक्चुअली प्रहलाद महाराज ने जैसे उनको देखा ये समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जरूर इसमें कुछ तो भी महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो प्रहलाद महाराज ने उनको अप्रोच किया, और फिर एक्चुअली नारद मुनि पहले एक अच्छा पॉइंट्स लिखते हैं, उससे पहले एक वर्स आता है। तो नारद मुनि बताते कि मटेरियल बॉडी जो है, ये जो शरीर है वो एक दिन जाने वाला है, और अभी तक हमारा कितना उम्र है इस शरीर में वो भी फिक्स नहीं है। तो इसलिए उससे पहले उनको बताते हैं कि एक्चुअली ये एक क्वालिटी है भक्त का, मुनि मुनि का मतलब कि थॉटफुल पर्सन, वो हमेशा सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है क्या, और वो सोच के वो आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है। तो उसमें उसे बताते हैं कि ऐसे सोचना चाहिए, नारद मुनि उनको ऐसे बताते हैं कि उनको ऐसा सोचना चाहिए कि जो है भौतिक शरीर है एक दिन जाने वाला है, और कितना दिन में हम इसमें हैं फिक्स है वो भी पता नहीं, तो इससे ये सोच के हमको कभी इसका जीवन या मृत्यु को का प्रशंसा या दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, तो अच्छे उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से ये देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे समय बीते जा रहा है। अभी वो बता रहे थे कि वन शुड ऑब्जर्व द इटर्नल टाइम फैक्टर, जो उसमें भौतिक जीवन में व्यक्ति आ रहा है, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रहा है, फिर जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रहा है, और समय लेकिन कभी एक जगह रुकता नहीं है, तो समय चलते जा रहा है, लेकिन तो उनको बोला था कि ये ऑब्जर्व करना चाहिए व्यक्ति को, और उससे क्या होता है कि वो ज्ञान और वैराग्य आ जाता है, ज्ञान आ जाता है उससे, फिर वैराग्य आ जाता है। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद भी एक जगह बोलते हैं कि ये सब वेयर इज माय फादर ग्रैंड फादर, ये सब अभी नाम रह गए हैं, अभी तो कोई है नहीं। तो उसी तरह ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है जीवन में प्रॉब्लम है, कुछ समय पहले नहीं था, और भौतिक संसार में ये अच्छा क्वालिटी है कि समय रुकता नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम भी वहीं पर ही रह जाएगा, तो लेकिन समय के अनुसार वो प्रॉब्लम भी चले जाता है बाद में, फिर कुछ समय के बाद जब समय जा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी कुछ समय में प्रॉब्लम में हूँ तो थोड़ा टॉलरेट करके अपना भक्ति कंटिन्यू करूँ, और फिर कुछ समय वो भी चले जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में जीवन में, क्योंकि जीवन में ये है संसार है, तो संसार का ये है कि दुख और सुख से चलते रहता है, लेकिन गोल जो फिक्स है हमारा कि भगवान की भक्ति पर एक लक्ष्य होना चाहिए, तो उससे हम जीवन में फिक्स रहते हैं। ऐसे फिर वो नारद मुनि उनको बताते, फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो उनसे अप्रोच करते हैं, तो अवधूत ब्राह्मणा भी उनको एक्चुअली ऐसा ही ज्ञान देते हैं कुछ तरह का, कि बता रहे थे कि मैं जीवन में ये योनि में रहा, इसमें रहा, कभी अपने संसार में पत्नी बच्चों के साथ जीवन बिताया, और लेकिन बाद में मुझे एक ज्ञान आया कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हालांकि ये इच्छा से, सुख पाने की इच्छा से मैं संसार में गया और जीवन बिताया, लेकिन बाद में अंत में पता चला कि कुछ सुख नहीं मिला। एक्चुअली ये नियम है कि जो जो जीवन का लक्ष्य गोल इसके पूरा जीवन इसके पर बिताते हैं कि सुख पाने की कोशिश करते हैं, तो उनको तो सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये भौतिक संसार का भगवान ने ऑलरेडी नियम कहा है कि दुखालय शाश्वतम। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर वैदिक नियम का पालन करेंगे तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा बताता उसे बताते हैं कि एक राजश्याम प्रभु एक अच्छा पॉइंट बताते हैं कि कहते हैं कि अगर इस संसार में समझ लो वैदिक नियम नहीं रहे तो क्या होगा। तो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि पुणे में बहुत जगह ऐसे चौक एरिया होगा, लेकिन वो उदाहरण देते हैं कि साधु वासवानी चौक, वहाँ पर कभी कभी सिग्नल बंद हो जाता है, तो जैसे ही सिग्नल बंद हो जाता है तो क्या होता है, सब गाड़ियाँ ये सोचता है कि मुझे जाना है, क्योंकि हर कोई ये संसार में भी एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, भोगने के लिए, तो हर कोई बोलता है कि मुझे जाना है, तो इससे क्या होता है कोई आगे नहीं बढ़ता है, तो वहीं पर ही अटक जाते हैं सब। लेकिन सिग्नल जब आ जाता है तो क्या होता है, फिर वो अपना जीवन मीन्स जाते भी हैं भोग भी, और एंड में अपना डेस्टिनेशन पर भी पहुँचते हैं। तो उसी तरह बताते कि वैदिक शास्त्र बताते प्रभु जी ऐसे ही है कि लोग ये सृष्टि में दुनिया में आते हैं भोग करने के लिए, लेकिन उसको अगर ये कंट्रोल, वैदिक शास्त्र उसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, तो वो उसको सिग्नल की तरह है, तो उससे वो एंजॉय अपना जीवन जी के, लेकिन लक्ष्य, क्योंकि वैदिक अनुसार अपना जीवन जी रहा है तो उनका लक्ष्य भी अचीव कर लेता है, तो इसलिए वो प्रभु जी बता रहे थे। तो हम देखते हैं कि ये शास्त्रों का कहने, शास्त्र इसके लिए हैं कि आप कैसे संसार में जो इच्छा लेके आए हैं उससे बाहर निकल के एक दिन पूरा प्योर डिवोशन सर्विस करना है। तो उसी तरह फिर अवधूत ब्राह्मण को ज्ञान देते हैं कि अंत में मुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए फिर मुझे ज्ञान आया कि कैसे भगवान ही है जो सबको सुखी दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने भगवान, इसलिए प्रहलाद महाराज को उन्होंने अप्रोच किया। तो ये तो प्रहलाद महाराज और अवधूता ब्राह्मण की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे भागवतम में आते हैं कि कैसे जो व्यक्ति जो है वो अपने एंजॉय करने के चक्कर में वो डूबते रहता है, लेकिन उनको साधु पुरुष सेंटली पर्सन को बचाते हैं। तो एक चित्रकेतु महाराज का में भी, उसमें भी यही पॉइंट आता है। एक्चुअली वहाँ पर लिखा हुआ है कि अंगिरा मुनि एक दिन जा रहे थे, वहाँ पर एक्चुअली वर्ड यूज़ किया हुआ है कि अंगिरा मुनि नो एंगेजमेंट, कुछ एंगेजमेंट नहीं था, इसलिए घूमते घूमते वो चित्रकेतु महाराज के शासन में आए। ऑफकोर्स उसमें एंगेजमेंट का नहीं का मतलब कहा गया कि वो उनका एंगेजमेंट एक ही है, साधुओं का एंगेजमेंट एक ही है कि वो घूमते रहना है और लोगों को भक्ति में लगाना है। तो फिर वो जब चित्रकेतु महाराज के शासन में आते हैं तो चित्रकेतु महाराज का चेहरा देख के एक्चुअली वो समझ जाते हैं कि हिज माइंड इज नॉट कंट्रोल। तो उसमें बताते हैं कि क्योंकि ये साधुओं का प्योरिटी इतना रहता है, उनका माइंड इतना कंट्रोल रहता है कि वो फेस से देख लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रॉब्लम से जा रहा है। तो फिर चित्रकेतु महाराज उनको बताते हैं, जी फिर अंगिरा मुनि उनको बताते हैं कि रीज़न क्या क्या रीज़न है। पहले उनसे प्रश्न ये बताते हैं कि आपके राज्य में जो 7 चीज़ें हैं वो सब प्रॉपरली चल रहा है क्या। 7 चीज़ें का क्या क्या बताए, आपके जो गुरु है, इंस्ट्रक्टर गुरु जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आप उनका प्रॉपरली नियम पालन, उनका कहना मान रहे हैं क्या। और आपके दूसरे, ये पहला है गुरु महाराज। सेकेंड कहा क्या है, मिनिस्टर, आपके जो मिनिस्टर हैं वो आपको प्रॉपरली आपको कॉर्पोरेट कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। फिर किंगडम, आपका किंगडम कैसे चल रहा है, कैसे आपके राज्य में सब जो है नागरिक कैसे हैं वो। फिर फोर्ट मतलब आपका ये किला, पूरा जो किला। और फिर ट्रेजरी, आपका जैसे आपका ये खजाना कैसा है, क्योंकि खजाने के बगैर, हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी यज्ञ करने के लिए बहुत खजाना लगता था। और फिर ये और बाद में कहा कि रॉयल ऑर्डर, आप प्रॉपरली ऑर्डर कर रहे हैं कि आप नहीं। और देन फ्रेंड्स, आपके मित्र। तो अगर ये कहा गया उसमें, अंगिरा मुनि कहते हैं चित्रकेतु महाराज को, अगर ये चीज़ 7 चीज़ें आपके जीवन में अच्छे चल रहा है तो आपका जीवन सही है। लेकिन बाद में फिर उनको दूसरे बाद में बताते हैं कि दूसरे वर्ष में क्योंकि ये नियम है कि इवन दो कहते हैं कि ये जो है राजा बलि अच्छा है, एकदम भगवान का भक्त है, लेकिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं कि सिचुएशन आते हैं कि वो सही नहीं रहते, तो बोलते हैं कि आप चाहेंगे भी कोऑपरेट करना लेकिन दूसरे नहीं करेंगे, तो लेकिन आप अपने पत्नी, अपने मित्र, इन सब से चाहेंगे कि वो आपका कहना माने लेकिन नहीं कहेंगे। और हालांकि आप भी उनको, फ्रेंड्स को कहना मानेंगे, लेकिन कहा गया एंड में कहा गया क्यों इन सबको आपका कहना नहीं माने या करे वो अलग बात है, सबसे पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। अगर ये आपका मन कंट्रोल हो गया तो ये सब आपको कोऑपरेट करे नहीं करे आपके पास है नहीं है, लेकिन आप अपना प्रॉपरली भगवान का फिक्स रहेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें भी अंगिरा मुनि उनको बताते हैं कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, जैसे अवधूता ब्राह्मण ने भी कहा उनको कि प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, बाहर नहीं है, प्रॉब्लम ये हमारा ही है, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम चाहते हुए भी प्रॉपरली चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको कहा कि पहले आप अपने आप पर वर्क करो कि कैसे मैं अपना जीवन, एक्चुअली ये सही है, एक मीन्स राजश्यामपुर एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक बार एक गुरु महाराज इधर इस्कॉन सन्यासी लेक्चर दिया, बहुत सिंपल लेक्चर दिया, बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई फिलोसॉफी का लेक्चर दिया, लेकिन लेक्चर होने के बाद इतने सारे व्यक्ति और इतने सारे लोग उनके आजू बाजू घेर गए, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी राजश्याम गुरु से पूछ रहे थे, प्रभु जी मैं इतना प्रिपेयर करता हूँ, इतना मैं आचार्यों का लेक्चर ये सब प्रिपेयर करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरे भी लोग सुने और ऐसे आजू बाजू घेरें, लेकिन मेरे लेक्चर होने के बाद कोई आता नहीं मेरे से मिलने के लिए। तो प्रभु जी ने कहा कि फिर ऐसा क्या है उसमें, उन्होंने तो इतना कुछ ऐसा बोला भी नहीं। तो प्रभु जी ने एक वर्स कोट किया, वो चौथे स्कंद में आता है, ओवर से क्या वो कहते हैं कि अगर ये भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे वही भगवान प्रसन्न हो, कुछ तो ऐसा वर्ष है नहीं भगवान प्रसन्न, तो वो वर्ष अगर ये भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो सब पर अट्रैक्टिव, सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ ध्रुव ध्रुव महाराज क्या, जैसे वही भगवान प्रसन्न हो, ऐसा वर्ष है, वो कहते हैं कि अगर ये भगवान आपसे प्रसन्न है तो आप में ये क्वालिटी आता है कि आप सब पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए राजश्याम गुरु का उनको ब्रह्मचारी को कि इसका अपेक्षा न रख के आप अपना प्योरिटी, अपना साधन, अपना ये सब बढ़ाओ और सेवा बढ़ाओ ताकि आप भगवान को अट्रैक्ट कर सकें, और फिर जब भगवान को अट्रैक्ट करेंगे तो आप में भगवान की क्वालिटीज आ जाएंगी, और फिर आप भगवान की सेवा भी अच्छी कर सकेंगे। इसका मतलब नहीं कि लोगों को अट्रैक्ट करना है मटेरियल, लेकिन वो भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अंगिरा मुनि ने जो भी चित्रकेतु महाराज उनको अप्रोच किया, तो अंगिरा मुनि तो पहली बार में उनका मन समझ गए थे कि मैं इनको भली ज्ञान भी दूंगा लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको वो चीज़ दिया ताकि वो उस आसक्ति से बाहर आ जाए और फिर भगवान पर आकर्षक आ जाता है। और तो ये थोड़ा इसमें पेनफुल होगा सिचुएशन, लेकिन अल्टीमेटली वो फिक्स रहेंगे। तो इसलिए अंगिरा मुनि ने उनको पहले नहीं दिया ये, बाद में फिर सेकेंड टाइम में अंगिरा मुनि उनके बाद तीन बार आए थे। फर्स्ट टाइम इसके लिए आए थे कि उनके राज्य में देखने के लिए चित्रकेतु महाराज का, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय गोविंद भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुधामा की, जय। सो ये श्लोका नंबर है 4.9.47, ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणेर मैत्री आदिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नन आप इव स्वयं। तो वहां पर ट्रांसलेशन है कि अनटु वन हु हैज ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ड्यू टू फ्रेंडली बिहेवियर विद सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड ऑल लिविंग एंटिटी ऑफर ऑनर जस्ट एज अ वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो डाउन बाय नेचर। तो कह रहे हैं कि जिसमें भगवान से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो वो सब व्यक्ति, सब जो जीव है उन पर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए रोजी बता रहे थे कि वन शुड एक्चुअली वर्क ऑन देयर ओन, खुद के जीवन में मैं कैसे भक्ति से भगवान को प्रसन्न करूं, उस पर बहुत जीवन में वर्क करना है। तो इसलिए अंगिरा मुनि उनको फिर बोलते हैं कि एक्चुअली अंगिरा मुनि को तीन बार मिलने के लिए आए थे। पहली बार तो हम देखा कि उनके राज्य में कैसे चल रहा है, फिर दूसरी बार जब उन्होंने देखा कि अंगिरा मुनि ने उनको चित्रकेतु के महाराज के कहने के और यज्ञ किया और फिर उनको स्वीट राइस दिया और कहा कि आपके पत्नी को दे दीजिए। और तीसरी बार वो नारद मुनि के बाद आए, तो हर तीनों में पहले वो बोलते, जब पहली बार तो चित्रकेतु महाराज को उन्होंने ज्ञान दिया कि आपके जीवन में, उनको ज्ञान दिया कि आप कैसे अपने जीवन में, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप सुख रहेंगे, नहीं तो फिर अपने आप पर कंट्रोल करो। लेकिन तभी भी चित्रकेतु महाराज, क्योंकि उनका मन अभी तक भौतिक चीज़ों में था, एक्चुअली भौतिक चीज़ों में चाहते तो अंगिरा मुनि उनको उसी बोल सकते थे। चित्रकेतु महाराज का इच्छा भौतिक नहीं था एक तरह से कहा जाए, क्योंकि वो वैदिक अनुसार कि वो उनका क्या था कि अगर ये कोई संतान नहीं होंगी तो ये सब जो होता है मृत्यु होने के बाद संस्कार ये सब वो कौन करेगा, तो इसलिए उनको संतान के बारे में बोल रहे थे। लेकिन अंगिरा मुनि चाहते तो उनको वो वर्ष बोल सकते थे कि जो भगवान का शरण लेता है तो भगवान उनका सब कुछ ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको पता था कि अगर बोलूँगा भी तो वो अभी स्थिति में नहीं है सुनने के लिए, इसलिए उनको मैंने वो चीज़ दिया ताकि बाद में उनको पता चले कि ये संसार का नियम है। तो संसार का नियम है कि भौतिक चीज़ें सुख नहीं दे सकती है, तो भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो दुखी आएगा। तो ये उदाहरण से उन्होंने हमको बताया कि कैसे कि हम अगर ये भगवान की सेवा में ही, एक्चुअली एक बाद में फिर वो बताते हैं कि जो राजश्याम प्रभु बताते हैं कि कैसे उनका धीरे धीरे जब वो हर्ष शोक आ गए तो उनका आसक्ति बढ़ते गया उन पर। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अटैचमेंट कैसे आता है, वो बता रहे थे अटैचमेंट इवन भक्ति विकास स्वामी महाराज भी बहुत पहले जब इधर आए थे तो बता रहे थे वेदी भक्ति क्या है। वेदी भक्ति एक भगवान से, हम अगर ये भक्ति भगवान से जितना हम अपने आप को संपर्क में रखेंगे उनसे आसक्ति बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, बहुत सरल उदाहरण है कि बोलते थे कि जब पिछले, अभी तो नहीं, वैदिक ओल्ड वैदिक लाइफ में जब पुरुष स्त्री का ब्याह होता था तो स्त्री, तो ऐसा नहीं कि स्त्री को तो पता भी नहीं था उनके पति कौन है, उन्होंने कभी उनका चेहरा वगैरह कभी नहीं देखा था। लेकिन जब स्त्री उनके घर पे जाती है ब्याह होने के बाद, फिर उनका सेवा करते रहती सेवा, तो सेवा करते रहने पर क्या होता है, उनका आसक्ति बढ़ जाता है। रेगुलर इंटरेक्शन एंड सर्विसेस हेल्प्स टू डेवलप अफेक्शन एंड फ्रॉम दैट अफेक्शन इट कम्स टू अटैचमेंट, ऐसे प्रभु जी बता रहे थे। तो ये महाराज बता रहे थे, भक्ति का स्वामी महाराज। तो उनका पहले ऐसे नहीं कि पहले उन्होंने आपस में मिले हैं फिर उनका अफेक्शन और अटैचमेंट हो गया, नहीं, रेगुलरली इंटरेक्शन कर करके फिर सेवा कर करके उनका एक दूसरे के प्रति अफेक्शन अटैचमेंट सब बढ़ गया। तो उसी तरह प्रभु महाराज बता रहे थे कि वैदिक भक्ति यही है, वैदिक भक्ति ये है कि आप पूरा दिन भगवान से संपर्क में रह के, भगवान की चीज़ों से संपर्क में रह के, जैसे बता रहे थे कि डीटी वर्शिप बोलते, अगर आप भगवान को नहलाएंगे, उनका वर्शिप करेंगे, उनको भोग लाएंगे, छड़ोपचार करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, ये सब करते रहेंगे तो आपका भगवान के ऊपर आकर्षण हो जाएगा और फिर पूरा दिन आपको जो सामान मिल रहा है जप कीजिए, भागवतम रीडिंग कीजिए, सेवा कीजिए, तो पूरा दिन अगर आप यही करते रहेंगे तो अफेक्शन हो जाता है और फिर अटैचमेंट हो जाता है। तो ये अटैचमेंट है, तो भौतिक संसार का भी यही नियम है। भौतिक संसार में भी कैसे उनका कृतधोति और चित्रकेतु महाराज का अटैचमेंट हो गया था, इतना अटैचमेंट हो गया था, एक्चुअली इतना अटैचमेंट हो गया था कि वो कृतधोति जो है वो भूल गई है कि भगवान को कर्स नहीं लेकिन भगवान को ब्लेमिंग करने लग गए, इतना वो मोह में हो गया था उनको। बाद में बोल रहे थे कि भगवान के कारण ही, भगवान अगर ये नियम क्या है कि पिता जीवित है और पुत्र नहीं है, फिर बोलते अगर ये फ्रूट एक्टिविटी है, कर्म है, तो आपसे श्रेष्ठ कर्म है तो आप क्यों आपकी पूजा करें, इतना कुछ बोल रहे थे, क्योंकि ये आसक्त अटैचमेंट ऐसा होता है। तो उसी तरह भक्ति का स्वामी महाराज बता रहे थे कि हमको उसमें आसक्त न रह के पूरा दिन भगवान के सेवा और भगवान से चीजों पर संपर्क रहेंगे तो उनसे आसक्ति बढ़ जाती है। तो बोलते कि फिर ये माइंड ऐसा है, माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। तो उनको जैसे आप दोगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज देंगे तो उसमें वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये भौतिक एक्टिविटी देंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जीवन में माइंड ऑलरेडी भौतिक चीज़ों में घुसा हुआ है तो वो उसमें है ऑलरेडी। तो इसीलिए जो हम बिगिनिंग में प्रभुवाद परपट में कह रहे हैं कि प्रभुवाद परपट में कह रहे हैं कि शास्त्रों का बहुत कठिन से पालन करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो प्रभुवाद कहते हैं कि कैसे साधु जो है वो बहुत दयालु रहते हैं, भले उन पर जैसे नारद मुनि को कर्ज मिला लेकिन उनको प्रॉपरली उन्होंने उपाय दिया। तो उसी तरह एक लेक्चर में वही राजश्याम प्रभु बता रहे थे कि हमको कैसे ये जीवन कैसे ये लोगों को देखना चाहिए। अगर हम लोगों से ईर्ष्या करेंगे या हेट्रेड या एनवियसनेस रहेंगे तो वो अच्छा नहीं है। वो फिर हमको लोगों को कैसे देखना चाहिए, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे कि इसी देखो ये बॉय और गर्ल एंजॉय कर रहे हैं या और कर्मी पूरा दिन हार्ड वर्क कर रहा है तो बहुत गधे और कुत्तों की तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको उनको क्या सोचना चाहिए कि ये इग्नोरेंस में है। जब हम देखेंगे वो इग्नोरेंस में है तो हमको उनका हेल्प करने का इच्छा होगा, नहीं तो हम उनसे इच्छा ईर्ष्या करेंगे और बहुत हेट्रेट ये करेंगे इन्वेस्टरनेस रहेंगे तो उनकी हेल्प करने का हमको इच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए लेकिन हम बोलेंगे प्रभु जी उदाहरण एक उदाहरण दे रहे थे कि जब वो बहुत इनिशियली ज्वाइन किया आश्रम तो एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में बहुत वाइट में थे और वो रात में उठे थे ट्रेन से 2 बजे आसपास, तो अपना चप्पल ढूंढ रहे थे, उनको चप्पल नहीं मिला। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद देखा कि एक दूसरा व्यक्ति बाथरूम से वो उनका चप्पल पहन के आ रहा है, ऐसा जो ट्रेन में हमेशा होते रहते हैं। तो उन पर इतना गुस्सा हो गए प्रभु जी, बोले ये सब मूंछी है, आपको पता नहीं दूसरे का चप्पल नहीं पहनना चाहिए, चाहिए वो चाहिए। तो अरे उनको कुछ पता नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बोले ये नॉर्मल है पहनते रहते हैं। तो प्रभु ने कहा बाद में फिर वो सोच रहे थे एक्चुअली वो उस व्यक्ति को मैं इतना गुस्सा हुआ हेटेड हुआ लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं सोचूंगा तमोगुण में है तो तमोगुणी होंगे तो उनको ज्ञान दूंगा, लेकिन हम उनसे ईर्ष्या करेंगे तो फिर फायदा नहीं। फिर उन्होंने प्रभु जी उनको दूसरा दिन सुबह उठ के उनको समझा, ज्ञान दिया। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि ये हमको बाहर के संसारी लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि वो तमोगुणी में है। तो तमोगुणी में होते हैं तो क्या होता है, हमको उनको हेल्प करने का अच्छा होता है, जैसे नारद मुनि ने अभी यहाँ पर उनको हेल्प किया। तो इसी तरह प्रभुवाद ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण परपट में जोर दे रहे हैं कि कैसे अपना जीवन अच्छी तरह से इनके नियमों के अनुसार पालन करना चाहिए और कैसे दूसरों का जो लोगों का हेल्प करना चाहिए, उनको तमोगुण में समझ के उनका उनको बाहर निकालना चाहिए। तो मैं जस्ट यहीं पर समय हो गया है, यहीं पर समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।